पृष्ठ संख्या 75, अध्याय 6, नारंग साहब की दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ती सिकुड़ती अपने मेज तक सिमट कर रह गई थी। इसी पर अखबार रखकर पढ़ते, इसी पर चाय की प्याली रखकर चाय पीते, इसी पर वह कभी कभार अपनी बेटी को खत लिखते, इसी पर कचहरी के अपने मुकदमों की तैयारी करते। मेज पर बैठते तो जिंदगी धुरे पर आ जाती। मेज के पीछे बैठना जिंदगी के चौखटे में फिट होकर बैठने के बराबर था। मेज पर पुराने कागजों, फाइलों और तरह तरह की चीजों का अंबार लगा था, पर कागजों का ढेर धीरे धीरे बढ़ना कम हो गया था, क्योंकि कचहरी में नारंग साहब की पेशियां धीरे धीरे कम होती चली गई थीं। मेज पुराना था और आकार में बड़ा था, इसमें दराज भी थे, पुराना कलमदान भी था, ब्लॉटिंग पेपर का पैड भी था, उसके पीछे घुमाऊ कुर्सी भी थी जिस पर नारंग साहब बैठा करते थे। मेज उस समय का बना था जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे और अपनी नई अमलदारी के लिए अपने काल के अंग्रेजी चलन के मुताबिक बोझल फर्नीचर बनवाया करते थे। पृष्ठ संख्या 76। यह मेज नारंग साहब ने 30 बरस पहले छावनी के एक कबाड़ी से खरीदा था। कमरे में एक आदमकद अलमारी भी थी जिसमें आदमकद शीशा लगा था। उस शीशे के सामने खड़े नारंग साहब नाटे से लगते थे। सिर पर मैली सी सफ़ेद पगड़ी, नीचे बंद गले का काला कोट, घुटनों से भी नीचे तक का, और उसके नीचे ढीली सी पतलून जो हर वक्त नीचे की ओर खिसकती रहती थी और जिसे ऊपर खींचते रहने की उन्हें सभा सोसाइटी में भी जरूरत पड़ जाया करती थी। यह अलमारी उन्होंने वर्षों पहले एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर से खरीदी थी जब वह तब्दील होकर फिरोजपुर जा रहा था और अपना काफी सामान बहुत सस्ते में बेच गया था। उस समय नारंग साहब की पत्नी जिंदा थी और कहा करती थी, कभी कोई नई चीज भी घर में लाओगे या कबाड़ खाने से ही लोगों की पुरानी चीजें ढो ढोकर लाते रहोगे। पर नारंग साहब कभी भी नई चीज खरीदने का साहस नहीं कर पाए। नई चीज खरीदते समय वह बहुत ही अटपटा महसूस करते, उनका मन शंकित सा हो उठता। नई चीज के स्पर्श मात्र से उन्हें किसी अनर्थ की आशंका होने लगती। घर में कोई नई चीज न लाने के बावजूद उनकी पत्नी छोटी उम्र में मर गई। उनका बड़ा लड़का आवारा हो गया और उनकी वकालत पर जाला चढ़ने लगा। दो दो तीन तीन रुपए के मुकदमे कर पाते और इसके लिए भी काला कोट पहने और सिर पर पगड़ रखे उन्हें कचहरी के गेट पर खड़े रहना पड़ता था। किसी को हलफनामे या मजिस्ट्रेट से दस्तखत करवाना होता या स्टाम्प पेपर लिखवाना होता या फिर साइकिल पर बत्ती ना होने के कारण पुलिस द्वारा किए गए मुकदमे में पेश होना होता तो नारंग साहब उन्हें गेट पर ही झपट लेते। दोपहर के वक्त नारंग साहब कचहरी में ही खड़े खड़े चने कुलचे खा लेते थे और प्याऊ से ठंडा पानी पी लेते थे और शाम को पड़ोस में बैठा ढाबे वाला वकील साहब को घर पर थाली पहुंचा देता था। नारंग साहब बहुत बोलते नहीं थे, मुवक्किल हाथ से निकल जाता तो चुपचाप ताकते रह जाते थे। प्रमिला अपनी चुप्पी में शायद अपने पिता पर ही गई थी, जैसा बाप वैसी बेटी। महेंद्र अक्सर गुस्से में प्रमिला के दिल का मांस नोचते हुए कहा करता था। मेज पर से उठते तो नारंग साहब अपनी ढीली पतलून ऊपर को खींचकर कमरे के बीचों बीच फर्श पर चलते हुए दरवाजे तक चले जाते। फर्श पर बिछी पुरानी घिसी पिटी दरी में एक रास्ता सा बन गया था। बरसों से नारंग साहब दाएं बाएं नहीं चले थे। दरवाजे के पास ही दीवार के साथ बाईं ओर चमड़े की एक चौड़ी सेटी रखी थी। नारंग साहब उस पर बैठना पसंद नहीं करते थे क्योंकि पृष्ठ संख्या 77, वह सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती थी। बगल वाले कमरे में नारंग साहब का पलंग था। नारंग साहब अपने जीवन में हर एक चीज को तैरती नजर से देखते रहे थे, इसलिए वह वास्तव में किसी चीज को भी ठीक तरह से नहीं देख पाए थे। कागजों और फाइलों के अंबार पर जमी धूल पर भी उनकी तैरती नजर ही पड़ती। बगल वाले कमरे में नारंग साहब का पलंग था। खिड़की के ऊपर की मेहराब पर हरे और लाल रंग के शीशे लगे थे। बाहर की दुनिया के रंगों की झलक घर में केवल यहीं पर मिलती थी। एक शीशा टूटा हुआ था और लगभग 10 साल से उसके स्थान पर नया शीशा नहीं लगाया गया था। एक बार साहस करके नारंग साहब ने अखबार के कागज को गड्ढमड्ढ करके उस टूटे शीशे की जगह को भर देने की कोशिश की थी, पर जब वह उसे खोस कर स्टूल के नीचे उतरे तो वह नीचे गिर पड़ा था। उसके बाद नारंग साहब ने उसे दोबारा रखने की कोशिश नहीं की। उसी कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल भी था। जब निचले दराज में चूहे दौड़ने लगे तो उन्होंने अपने कपड़े निकाल कर ऊपर वाले दराज में रख दिए थे। जब एक रोज़ उस दराज में भी उन्हें चूहों की बीट नज़र आई तो उन्होंने कपड़े निकाल कर सामने वाले पलंग पर रख दिए। वहाँ से कपड़े चुनने पहनने में भी ज़्यादा आराम था और तब से चूहों की भी कोई रुचि उनके कपड़ों में नहीं रह गई थी। ये दो कमरे, उनका दफ्तर और सोने का कमरा, उनके घर का बसा हुआ भाग था। बाकी तीन कमरे एक तरह से बंद पड़े थे। उनकी पत्नी के देहांत के बाद वे कमरे कभी कभार खोले जाते, मगर प्रमिला की शादी के बाद तो कभी भी नहीं खोले गए। उन कमरों में घर का सामान था, तीन पायों वाली एक चारपाई, जिसकी रस्सी एक बार सफर के लिए बिस्तर बांधने के लिए निकाल ली गई थी, आटा पीसने की एक चक्की, बर्तनों की एक बाल्टी, मिट्टी के दो चार घड़े, दो एक संदूक आदि। इस घर में शौक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शौक होता तो कहीं फूल होते, शौक होता तो घर में जाले नहीं होते, शौक होता तो कभी प्रमिला अपने बच्चे को लेकर यहाँ आती। घर के बाहर एक एक करके 7 साइन बोर्ड लगे थे। सबसे बड़े बोर्ड पर चार भाषाओं, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में नारंग साहब का नाम और वकालत की डिग्री लिखे थे। भगवान दास नारंग, BA, LLB, वकील। पृष्ठ संख्या 78। वकील शब्द बड़े अक्षरों में था। दूसरा छोटा बोर्ड केवल अंग्रेजी में, तीसरा केवल उर्दू में और चौथा केवल गुरमुखी में था। अपनी भाषाओं में बोर्ड उस वक्त लिखवा कर लगाए गए थे जब नारंग साहब को यथार्थ का बोध हुआ था और वह इस बात पर यकीन करने लगे थे कि बड़े बड़े मुकदमों पर आंखें लगाए रखने की जगह छोटे छोटे मुकदमे करने में ही ज़्यादा लाभ होगा, और छोटे मुकदमे लाने वाले लोग अंग्रेजी नहीं जानते। पर अब सभी बोर्ड जंग आलूदा, पीले जर्जर और फीके पड़ चुके थे। एक बोर्ड तो एक कील के सहारे टेढ़ा लटका हुआ था और बारिश आंधी के दिनों में रात भर दीवार के साथ टकराता, माथा पीटता रहता था। नारंग साहब कुछ दिन तक कहते रहे थे, इसे आज ठीक करवाऊंगा, कल ठीक करवाऊंगा, पर धीरे धीरे उसे ठीक करवाने की ज़रूरत का एहसास जाता रहा था। गरीब नवाज, यह शब्द नारंग साहब का चहेता शब्द था। भगवान का नाम लेते तो उन्हें गरीब नवाज कहकर पुकारते, मजिस्ट्रेट से बातें करते तो गरीब नवाज कहते, वकील को संबोधन करते तो गरीब नवाज कहते। गरीब नवाज शब्द उनका तकिया कलाम ही नहीं था, उन्हें पसंद भी था। उसमें एक प्रकार की विनम्रता थी, अपने को भूमिसात कर देने की उत्कंठा थी। शब्द तो और भी थे, बंदा परवर, मेहरबान, बुजुर्गवार आदि, पर गरीब नवाज वाली बात उनमें से किसी में भी नहीं थी। गरीब नवाज शब्द कह देते तो उनका दिल भर आता, माथा झुक जाता, हाथ जुड़ जाते, मानो भगवान के आगे सिर नवा रहे हों। इस गरीब नवाज शब्द में ही उनकी जिंदगी का फलसफा था। गरीब नवाज शब्द का उच्चारण करवा सुबह बिस्तर पर से उठते, गरीब नवाज, मगर मेरे मुवक्किल का कहना है कि उसके साइकिल का लैंप हवा से बुझ गया था, और जब सिपाही ने चालान किया तो उसने सिपाही का हाथ पकड़कर उसे लैंप के साथ लगाया भी था, और उस वक्त वह लैंप गर्म था। गरीब नवाज, यहाँ पर दस्तखत कर दें, हलफनामा है हुजूर। गरीब नवाज, 7 नंबर की बस कहाँ से मिलेगी? गरीब नवाज, यह मेरी बेटी प्रमिला अब आपकी अमानत है, आपका घर अब इसका घर है। नारंग साहब की जिंदगी धुरे पर से उतरी हुई जिंदगी थी, पटरी पर से उतरी हुई। पटरी पर से उतरे उन्हें दसियों बरस बीत चुके थे। जिंदगी की पटरी कौन सी होती है? बीबी, काम, शौक, पैसा। चिट्ठियां डालने वाले बक्से पर ताला नहीं लगा था। सुबह की डाक नारंग साहब देखकर कचहरी जाते थे, यों भी आते जाते वक्त बेवक्त वह लेटर बॉक्स को खाली खोलकर देखते रहते थे। यह केवल आदत के कारण, कहीं से उन्हें चिट्ठी का इंतजार हो ऐसा नहीं था। पहले लेटर बॉक्स की बगल में बिजली की घंटी का बटन हुआ करता था और चिट्ठी सान को हिदायत दी थी चिट्ठियां बक्स में डालते समय घंटी बजा दिया करें, पर घंटी का स्विच कोई तोड़ कर ले गया था। तार अभी भी दरवाजे के साथ लटक रही थी। नया स्विच लगवाने के बारे में नारंग साहब को शुरू से ही ख्याल नहीं आया था। अब उसे ठीक करवाने की ज़रूरत का एहसास भी जाता रहा था। नारंग साहब ने मेज़ पर बैठकर चिट्ठी खोली और उसे पढ़ते हुए सकते में आ गए। पढ़ चुकने पर सीधा कुर्सी पर बैठ गए, फिर उठ खड़े हुए, फिर बैठ गए, कुर्सी की बाहों पर उंगलियां बजाने लगे। तभी उनकी टांगों में लर्जिश उठी और उनका सारा बदन कांप कांप गया। वह उठे, टहलते हुए कमरा पार कर गए और दूसरे कमरे में पहुंचकर अपनी खाट की बाहीं पर बैठ गए। वहां भी बाहीं पर उंगलियां बजाते रहे। यह क्या बखेड़ा खड़ा हो गया है, चैन से बैठना नसीब में ना हो तो कोई क्या करे। वह उठकर फिर कमरे में आ गए और कुर्सी पर बैठकर चिट्ठी को देखने लगे। चिट्ठी में एक ही वाक्य मतलब का था, प्रमिला और मैं अब एक साथ नहीं रह सकते। मतलब की बात यही थी जो दिल पर चोट करती थी, बाकी कोरी लफाजी थी। इसमें कसूर मेरा ही समझिए, मैं आपके विश्वास और आशाओं के योग्य साबित नहीं हुआ। डॉट डॉट अंत में लिखा था, मैं चाहता हूँ हम चुपचाप अलग हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि मामला कचहरी में जाए, पर अगर आप इसे कचहरी में ले जाना चाहते हैं तो मुझे इसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। डॉट डॉट चिट्ठी लिख देना कितना आसान होता है, मगर कभी शादियां भी यूं टूटी हैं। दोष प्रमिला का ही होगा, उसकी माँ भी बड़ी हठी थी। अब भुगतो, फिर दामाद को बुरा भला कहने लगे। इस बीच वह बराबर टहलते रहे, फिर सीधे गुसलखाने में चले गए। वहाँ देर तक दोनों हाथों में सिर थामे बैठे रहे। गुसलखाने से लौटे तो इतने थक चुके थे कि पलंग पर लेट गए और कंबल से मुंह सिर ढांप लिया। मुंह ढांपने से उन्हें कुछ पृष्ठ संख्या 80 राहत मिली। कुछ देर के लिए बात आंखों से ओझल हो गई। उसका ओझल रहना ठीक ही होगा, थोड़ा सो लूँ फिर सोचूंगा। इस बुढ़ापे में भी मुझे चैन से नहीं बैठने देते। बेटी का चेहरा आंखों के सामने आया तो करवट बदल ली, पर वह दूसरी करवट भी सामने आ गया। फिर महेंद्र का पत्र याद आया और उनका दिल धक से रह गया। डॉट डॉट उन्हें सहसा एहसास हुआ कि बड़ी हैवतनाक बात होने जा रही है। मेरी बेटी तो कहीं की न रहेगी, उसकी ज़िंदगी तो मिट्टी में मिल जाएगी, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। वह उठ बैठे और बाहीं पर से टांगे लटकाते हुए बुदबुदाए, बुढ़ापे में भी चैन से बैठना मेरे नसीब में नहीं है। मेरी तो किसी को चिंता नहीं है, अब इनके झगड़े भी मैं निपटाऊं। डॉट डॉट अगर उसने सचमुच प्रमिला को छोड़ दिया तो प्रमिला अपने बच्चे को लेकर यहाँ आ जाएगी। उसके घर में आ जाने की कल्पना सुखद थी। घर में चूल्हा जलने लगेगा, गरम रोटी मिला करेगी, घर में कोई बात करने वाला होगा, पर स्थिति ऐसी गंभीर थी कि उस पर अपने आराम की बात अटपटी सी जान पड़ती थी। प्रमिला को उसी अपने घर में बने रहना चाहिए, एक दिन के लिए भी नहीं आना चाहिए। यहाँ आने का मतलब होगा महेंद्र के हाथ मजबूत करना। एक बार वह उसके घर से निकल आई तो वह उसे दोबारा घुसने नहीं देगा, अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देगा, खुद सुरखरू हो जाएगा। सोचते ही नारंग साहब उत्तेजित हो उठे। कुछ करना होगा और अभी करना होगा। वह धीरे धीरे चलते हुए मेज पर आए और कलम उठाकर खत लिखने बैठ गए। तभी उन्हें लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई है। गाहे बगाहे घर पर भी कोई मुवक्किल आ जाता था। उस रोज किराने वाला दुकानदार आ गया था, मुस्तकी ही सही, फिर भी कानूनी सलाह तो मांगने आया था, पर दोबारा दस्तक नहीं हुई। सादा कागज आधा फाड़ कर नारंग साहब खत लिखने लगे। खत उनके हमजुल्फ के बेटे के नाम था। तुम उनसे मिलो और उन्हें समझाओ कि यह खौफनाक कदम न उठाएं। मेरी तो अक्ल काम नहीं करती कि क्या होने जा रहा है। मैं यूं भी बीमार रहता हूँ, चलता हूँ तो चक्कर आते हैं, डॉट डॉट। तभी नारंग साहब को लगा जैसे किसी का साया मेज पर पड़ा है, कि पिछली खिड़की से किसी का साया कमरे में आया है। उन्होंने सिर उठाकर देखा, फिर झट से उठे और खिड़की खोली। बाहर आंगन में कोई औरत खड़ी थी। क्या है बीवी, मुझसे बात करनी है? तभी वह औरत आगे बढ़ाई। पृष्ठ संख्या 81। मैं हूँ जी, मैं हूँ पिताजी। प्रमिला, प्रमिला तुम हो? आओ आओ मेरी बच्ची, ठहरो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। और नारंग साहब कमरा लांघ कर बरामदे में दरवाज़ा खोलने चले गए। प्रमिला को बाहों में भरे भरे ही वह अंदर लाए। उसे बाहों में भरते ही लगा जैसे समस्या अपने आप हल हो गई है, उसका सदा सदा के लिए समाधान हो गया है। अकेली आई हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? अकेली आई हूँ। पप्पू को भी नहीं लाई? पप्पू को उन्होंने बोर्डिंग में डाल दिया है। इतने छोटे बच्चे को बोर्डिंग में डाल दिया? नारंग साहब को पप्पू की उम्र के बारे में स्पष्टतः कुछ भी याद नहीं था कि वह कितने बरस का होगा। 6-7 बरस का ही हो सकता है, 10-11 का भी। चश्मे के पीछे से वह अपनी बेटी के चेहरे की ओर देखते रहे। प्रमिला बड़ी उम्र की लगने लगी थी, गालों पर आंखों के ऐन नीचे साए से उतर आए थे, रूखे बालों में इधर उधर सफ़ेद रेशे भी नजर आ रहे थे। नारंग साहब मुस्कुराए, बेटी का हाथ पकड़कर बोले, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। याद है जब बाहर आंगन में दौड़ दौड़ कर तितलियां पकड़ा करती थी? बिटिया बड़ी हो गई। नारंग साहब खुद जगह जगह से पिचक गए थे, ठुड्डी पिचक गई थी, मुंह बंद करते तो होंठ दबकर गायब हो जाते, पगड़ी चिपक गई थी, सारी देह पिचकी हुई सी लग रही थी। प्रमिला अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता के चेहरे की ओर देखे जा रही थी। इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह पिता के चेहरे की ओर वैसे ही देखे जा रही थी जैसे बचपन में देखा करती थी। दुनिया का सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली पुरुष, सबसे समझदार, सबसे ज़्यादा रोब दाब वाला, जिसकी एक ही घुड़की सुनकर वह कांप जाया करती थी। वह अब भी एक घुड़की दे देंगे तो महेंद्र कांप कांप जाएगा। भाई का खत आता है? कहाँ है आजकल? जहन्नुम में, मुझे क्या मालूम कहाँ है। कभी सुनता हूँ कानपुर में ठोकरें खा रहा है, कभी इलाहाबाद में। पृष्ठ संख्या 82। नारंग साहब उठकर टहलने लगे, भावुकता के सरोवर में से जैसे घबरा कर बाहर निकल आए थे। सहसा उन्हें प्रमिला की और साथ में अपनी विकट स्थिति का भास कचोटने लगा। थोड़ी देर तक टहलते रहने के बाद सहसा बोले, खर्चा कौन देगा? प्रमिला अभी भी उनकी ओर देखे जा रही थी। कौन सा खर्चा? पप्पू का, तुम्हारा, डॉट डॉट। पप्पू का खर्चा वह देंगे, मेरे खर्चे का तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोली, उन्होंने कहा है कि 6 महीने तक अलग अलग रहकर देखेंगे। नारंग साहब फिर टहलने लगे, प्रमिला उनकी ओर देखे जा रही थी, इस आशा से कि वह फौरन ही उसकी समस्या को हल कर देंगे। तुम्हें वहां से नहीं आना चाहिए था, वह तुम्हें जबरदस्ती घर से निकाल तो नहीं सकता ना। फिर नारंग साहब उसके आयन सामने आकर खड़े हो गए। वही तो तुम्हारा घर है, वह क्या कहता था, 6 महीने के लिए अलग अलग रहकर देखेंगे? उन्होंने आपको खत में लिखा होगा? खत में उसने अलग होने की बात लिखी है, 6 महीने का कुछ भी नहीं लिखा। तुम वहां से चली क्यों आई? तुम मुझे खत नहीं लिख सकती थी? मैं खुद थोड़े ही आई हूँ, उनकी चाची घर में आ गई हैं, वह बहुत बुरी औरत हैं, डॉट डॉट। प्रमिला आगे कुछ नहीं कह सकी। हफ्ता भर पहले महेंद्र की चाची उसके घर आ गई थी। पहले तो प्रमिला से बड़े प्यार से मिली, पर फिर सहसा ही उनका रुख बदल गया। शीघ्र ही प्रमिला को फटकारने लगी, कल शाम वह प्रमिला पर बरस पड़ी थी। सुन ले भली मानूस, अब तू यहाँ से चली जा, सीधी तरह से नहीं जाएगी तो चोटी पकड़कर निकाल दूंगी। तूने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है, अब मैं और नहीं रहने दूंगी। महेंद्र उस समय अपने कमरे के बीचों बीच टांगे फैलाए खड़ा था, वहीं पत्थर का बुत बना खड़ा था, उससे हिला डुला नहीं गया। प्रमिला ने महेंद्र की ओर देखा था और देर तक देखती रही थी। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? उसने नज़दीक आकर पूछा था, तुम मुझे घर से निकाल देना चाहते हो? और महेंद्र देर तक काठ का बुत बना खड़ा रहा था। पृष्ठ संख्या 83, हमें कम से कम कुछ देर के लिए अलग रहना चाहिए। कुछ देर के लिए क्यों? लात मारकर बाहर निकालो छिनाल को, सोचते क्या हो? पीछे से चाची ने चिल्लाकर कहा था, और उसी दिन दो कपड़ों में वह निकल आई थी। इस सूरत में वह वहाँ कैसे रह सकती थी? और पिताजी कह रहे हैं कि मुझे वहीं पर बने रहना चाहिए था। एक बार टूट जाए तो फिर यह जुड़ती नहीं, सिर पर खड़ा बाप बोले जा रहा था। इतना खींचो कि टूटे नहीं। बड़ी कच्ची डोर होती है शादी की, समझबूझ से काम लेना चाहिए। अब तुम कोई बच्चा तो नहीं हो ना? ख्वाम ख्वाह बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। देर तक टहलने, झिकने, खींचने के बाद नारंग साहब को कचहरी की याद आई। 11 बजे के लगभग स्टाम्प पेपरों और हलफनामों पर दस्तखत करवाने वाले लोग आने लगते हैं। उसी वक्त ही मजिस्ट्रेटों को थोड़ी फुर्सत भी रहती है, अब न पहुँचे तो दिन बर्बाद हो जाएगा। देर से पहुँचे तो छोटे मजिस्ट्रेटों के चपरासियों के साथ उलझना पड़ता है। पर घर में चाय की पत्ती तक नहीं थी। बर्तन बरसों पहले से बाल्टी में बंद रखे थे, एक बाल्टी और एक लोटा गुसल खाने में रखे थे, और बस। नारंग साहब ने जेब में से अठन्नी निकाल कर प्रमिला की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह 8 आने रख लो, मैं जाते हुए ढाबे वाले से कहता जाऊंगा कि तुम्हें थाली पहुंचा दे। यह 8 आने उसे दे देना, मैं उधार नहीं रखता, साथ साथ रोज के रोज पैसे देता हूँ, इसमें गड़बड़ नहीं होती। नहीं पिताजी, मेरे पास पैसे हैं, उन्होंने आते वक्त मुझे 50 रुपये दिए थे, आगे भी देता रहेगा यह मुझे नहीं मालूम, आगे नहीं देगा, उसने सस्ते में टाल दिया है। फिर अठन्नी बेटी की ओर बढ़ाते हुए बोले, पर बाप के घर में तो तुम खर्च नहीं कर सकती हो ना? यह लो पकड़ो अठन्नी। पर प्रमिला ने फिर भी सिर हिला दिया। पृष्ठ संख्या 84, नहीं पिताजी, मेरे पास पैसे हैं, आप रखिए, प्रमिला ने दृढ़ता से कहा। बहुत कम पैसे हैं इसलिए इनकार कर रही हो? पिता ने धीमी आवाज में कहा, आजकल मेरा काम बहुत अच्छा नहीं है, ज्यादा होते तो मैं जरूर तुम्हें ज्यादा पैसे दे जाता। ढाबे वाला एक थाली के 8 ही आने लेता है, इसीलिए डॉट डॉट। पर प्रमिला ने सिर हिला दिया और वह स्वयं अपने व्यवहार पर हैरान रही थी। एक अजीब दृढ़ता से वह बार बार इनकार किए जा रही थी, जैसे अंदर ही अंदर उसके कोई गांठ सी पड़ती जा रही हो, जैसे अंदर ही अंदर कोई चीड़ सहसा कठोर होने लगी हो, लोहे के तार की तरह। नारंग साहब कमरे के बीचों बीच उत्तेजित से टहलने लगे, बार बार सिर झटकते, बार बार हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाते, बार बार उनके मुंह से ऊह ऊह शब्द निकलता। वह यहाँ तक अपने में खो गए थे कि लगता था उन्हें प्रमिला की उपस्थिति का भी बोध नहीं रहा हो। माँ जब जिंदा थी तब भी वह टहला करते थे, पर इस तरह से सिर नहीं झटका करते थे, इतने बूढ़े और निसहाय नहीं नजर आते थे, ना ही इतने अधिक उत्तेजित हुआ करते थे। प्रमिला को लगा जैसे उसने अपने बाप को किसी गहरे कुएं में धकेल दिया है। आपको कचहरी से देर हो रही है पिताजी, आप जाइए, मैं जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगी। नारंग साहब ठिठक गए। प्रमिला की ओर देखते हुए वह इस दुनिया में लौट आए, उन्हें अपनी स्थिति का भास हुआ। उन्होंने जेब में से काला धागा खींचकर घड़ी निकाली, 10:30 बज रहे थे। वह मेज की ओर गए, एक फाइल उठाई और सीधे बाहर को जाने लगे। पर प्रमिला को पुराने वक्तों के मुताबिक हल्का सा भास हुआ कि वह दरवाजे तक पहुंचकर लौट आएंगे और फिर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहेंगे। इतनी देर से जो वह टहलते हुए अपने मन को मथते रहे थे, तो उसका निष्कर्ष तो बताकर ही जाएंगे। अपनी बड़ी बड़ी आँखें अपने पिता की पीठ पर लगाए वह चुपचाप बैठी रही, और नारंग साहब सचमुच ही बाहर वाले दरवाजे में से लौट आए, और न जाने क्यों प्रमिला का दिल धक से रह गया। बचपन के दिनों में वह और उसका भाई उनकी इस हरकत पर हंस दिया करते थे। मैं तुम्हारी मुश्किल हल नहीं कर सकता, ये मामले बड़े टेढ़े होते हैं, उन्होंने साफ दो टूक भाषा में कहा। कचहरी में मामला ले जाऊं तो जो थोड़ी बहुत पूंजी है वह भी खत्म हो जाएगी, और बने बनाएगा भी कुछ नहीं। तुम या पृष्ठ संख्या 85, तो उसके पास लौट जाओ या कोई छोटा मोटा काम देख लो। यहाँ आकर तुमने बिल्कुल बच्चों वाली बात की है। उन्होंने मुझे निकाल दिया है पिताजी, मैं खुद नहीं आई। यों कोई निकाल सकता है? तुम मुझे बच्चा समझती हो? नारंग साहब ने उत्तेजित होकर कहा, फिर संभल गए। मैं क्या करूँ, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा। तुम कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी? फिर नारंग साहब उसके करीब आ गए। प्रमिला समझ गई क्यों आए हैं, और समझते ही उसकी आंखें छलक आईं। माँ के जीते जी भी पिताजी का ऐसा व्यवहार हुआ करता था। पहले जली कटी बात कह दिया करते थे, फिर मनाने आ जाया करते थे। बच्चों के सामने माँ से माफियां मांगने लगते थे। दुखी ना हो प्रमिला मेरी बच्ची, मैं तेरा दुख समझता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, पर जमाना ऐसा आया है किसी को कुछ सोचता नहीं कि क्या करे। उनसे कहिए पप्पू को मुझे दे दें, मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं उनसे कुछ नहीं मांगती, मैं अलग हो जाऊंगी। प्रमिला ने रोते हुए कहा। पप्पू कहाँ है? नारंग साहब को याद आया, उसे उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। नारंग साहब का हाथ जो प्रमिला की पीठ सहला रहा था छिटक गया, और वह कुछ देर तक सोचते रहे। तेरे पास वह क्या करेगा प्रमिला? वहाँ अच्छे स्कूल में रहेगा, कुछ पढ़ लिख जाएगा, खर्च भी बाप देगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं उसे अच्छी तालीम दे सकूँ? जहाँ वह बैठा है उसे वहीं रहने दे, कभी कभार जाकर मिल आया कर। वह मिलने नहीं देते, उन्होंने स्कूल वालों को मना कर दिया है। मैं क्या करूँ? इसका मतलब वह कौन है मना करने वाला? बूढ़ी हड्डियों में हरारत आई। स्कूल वालों को क्या अधिकार है कि बच्चे को माँ से ना मिलने दें? कानून मर गया है, कौन है मना करने वाला? अव्वल तो डॉट डॉट पर कानून की कठिनाइयों की भयावह काली दीवार उनकी आंखों के सामने फिर सहसा खड़ी हो गई, जिसे पार करना उनके बस का ना था। घूम फिर कर जिस रास्ते से भी जाओ, वह काली दीवार सामने खड़ी हो जाती है। पैसे की ताकत से ही इंसान उसे पार कर पाता है, और वह पैसा इस घर में चुक गया था। घर में पृष्ठ संख्या 86 से पैसा निकल गया था, और बुढ़ापा अपनी संपूर्ण शिथिलता और थकावट के साथ उतर आया था। प्रमिला की निष्प्रभ हताश आंखें उन्हें देखती रह गईं। नारंग साहब फिर पीठ पीछे हाथ बांधे कमरे में टहलने लगे।